ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वाराणसी में विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
सुरेश जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी धन्यवाद, नमस्कार।
सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ और क्या उनकी लागत थी कुल।
प्रधानमंत्री जी ने आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया
जी।
यही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में, किसी समय में वहां से वाराणसी शहर तक पहुंचना बहुत कठिन होता था, लेकिन आज इतने एक्सप्रेस वे बना दिए हैं, हाईवे बना दिए हैं, जिससे आज बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं। लेकिन उस हवाई अड्डे का भी जो विकास है, उसके नए रनवे शुरू करने का, हवाई पट्टी उसमें जो है विकास करने का, उसके लिए 2,870 करोड़ रुपए उन्होंने उस पर आज उसका काम शुरू किया है। यही नहीं, साथ ही वहीं से आपने आगरा हवाई अड्डे का 570 करोड़ का जो है सिविल एन्क्लेव, नागरिकों को रहने के लिए उन्होंने व्यवस्था किया है, तो दूसरी तरफ जो है दरभंगा हवाई अड्डे में 910 करोड़ का उन्होंने व्यवस्था किया है, और बगडोगरा एयरपोर्ट में भी 1550 करोड़ का कार्य का आपने उद्घाटन किया। यही नहीं, रीवा मध्य प्रदेश में जो हवाई अड्डा बना है, और इसमें भी रीवा में जो नए टर्मिनल बिल्डिंग है, और अंबिकापुर में जो माँ महामाया हवाई अड्डा है, और जो सरस्वा हवाई अड्डा है, ये 220 करोड़ का आपने आज काम का जो है न सिर्फ आपने जायजा लिया बल्कि उसका उद्घाटन भी किया। यानी कि इन सभी हवाई अड्डों में मिलकर इनकी जो कैपेसिटी है, ये इनकी क्षमता 2,03,00,000 यात्रियों को ये सुविधा प्रदान करेंगी, और हमारे जो विरासत है, हमारे जो संस्कृति है, उसी संस्कृति से प्रेरित होकर सभी हवाई अड्डों का जो है डिजाइन भी तैयार किया गया है। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री खेलकूद, ये आपको पता ही है कि उनके कार्यकाल में ही खेलो इंडिया, जिसके तहत आज हमारे भारतीय खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर, चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, या एशियन गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पैरालंपिक्स हो, बहुत पहचान मिली है, उनके लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं किया गया है, और उसी को बढ़ावा देने हेतु वाराणसी में भी आज जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 210 करोड़ रुपए का जो है आपने उद्घाटन किया, स्मार्ट सिटी मिशन का जो है उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है, जिसमें नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस होगा, खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल होगा, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर होगा, प्रैक्टिस के लिए बड़े बड़े मैदान दिए जाएंगे, इंडोर शूटिंग रेंजेस होंगे, कुश्ती, इन सब के लिए आपको जो है स्पोर्ट्स अरीना, और यही नहीं, लगभग 100 कमरों वाला गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल भी और पब्लिक पेविलियन भी जो है लालपुर में भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम। यही नहीं, पर्यटन, क्योंकि पर्यटन बहुत आवश्यक है आर्थिक विकास के लिए। इस दृष्टि से वाराणसी से सटा हुआ सारनाथ है, यहाँ आप कई प्रोजेक्ट्स का, जिनमें आपके जो पेडेस्ट्रियंस है, यानी कि पैदल यात्री जो चलते हैं, उनके लिए बहुत ही, क्योंकि विदेशों से आपको पता है कि सारनाथ में खासकर बौद्ध राष्ट्रों से बहुत सारे पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं, उनके सुविधा के लिए फ्रेंडली स्ट्रीट्स होगा, सीवरेज के नए लाइंस जो है उसकी व्यवस्था होगी, ड्रेनेज को और बेहतर करने की कोशिश है, और वेंडिंग कार्ट्स, यानी कि वहां हमारे खान पान के जो सामग्री है, हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो है, उनको प्रोत्साहित करने हेतु वहाँ डिजाइनर वेंडिंग कार्ड्स का भी जो है उद्घाटन होगा। और यही नहीं, बाणासुर मंदिर में, गुरुधाम मंदिर में सौंदर्यीकरण के लिए और इनके पुनर्विकास के लिए, खासकर जो वहाँ पार्क बने हुए हैं, उसके भी जो है आपने आज उद्घाटन किया। मैं समझता हूँ कि एक ही यात्रा के दौरान कई हजार करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को आपने उद्घाटन किया, जिससे वाराणसी के लोगों में उत्साह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया। आज के सभी उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शंकराचार्य स्वयं मौजूद भी थे, आरजे आई हॉस्पिटल के कार्यक्रम में, और उनके विकास के प्रति जो प्रतिबद्धता है, और साथ ही आध्यात्मिकता और जो मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आध्यात्मिक और साथ ही साथ जो परिवर्तन की भी आवश्यकता है, समय के अनुकूल हमारे सुविधाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है, दोनों में एक संतुलन बनाते हुए विकास का आपने एक मॉडल प्रस्तुत किया।
अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, आज प्रधानमंत्री ने शंकरा नेत्रालय का उद्घाटन किया है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि काशी जो है मेडिकल हब बन रहा है एक तरीके से, तो पूर्वांचल और लोकल स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जो है कैसे सुधरेगी इससे?
बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, शंकरा नेत्रालय में खासकर महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए फ्री कंसल्टेशन का जो है व्यवस्था की गई है। आपको पता ही है कि एनडीए सरकार ने जो आयुष्मान योजना किया था, उसके तहत कई करोड़ों के कठिन से कठिन जो सर्जरीज हैं, जो बहुत महंगे आते थे, वो आम आदमी के लिए भी आज वो सुविधा उपलब्ध है निजी अस्पतालों में। तो इसी प्रकार जो है शंकर नेत्रालय का भी आंखों के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए, जो समस्याएं होती थी आंखों को लेकर, एक सुपर स्पेशलिटी शंकर नेत्रालय का पूरे भारतवर्ष में पहचान है, उसकी जब शाखा आज वाराणसी में खुला है तो उसका लाभ जो है खासकर उस क्षेत्र में मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, इस सब को लेकर वहां बहुत बड़े संख्या में लोग परेशान थे, और इस नेत्रालय के खुलने से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरों में तो देखिए आपको पता ही है कि कुछ कुछ सुविधाएं निजी क्षेत्र में रहता है, लेकिन शंकर नेत्रालय के आने से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।
हवाई अड्डों के विस्तार पर अगर बात करें तो ये रनवे का विस्तार हो या फिर नया टर्मिनल बनाने की बात हो, तो वाराणसी की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या क्या बदलाव आएंगे, खास तौर पर जब हम पर्यटन का क्षेत्र देखते हैं?
हवाई चप्पल से हवाई यात्रा का प्रधानमंत्री का एक सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो है हवाई यात्रा कर सके, और आप आज दिल्ली से लेकर किसी भी हवाई अड्डे में जाएंगे आपको वो स्थिति दिखाई देती है, जहां हम लोग कभी अपने बचपन में हवाई यात्रा को समझते थे कि जीवन में एक हवाई यात्रा कम से कम होना चाहिए, ये एक सपना होता था। हमारे तो माता पिता कभी हवाई यात्रा कर ही नहीं पाए, वो इतना महंगा होता था और एक साधारण परिवार के लिए वो संभव नहीं था कि वो हवाई यात्रा निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग के परिवार के लिए। लेकिन आज रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ आपको हवाई अड्डों में दिखाई देता है, जिस तरीके से ओपन स्काई पॉलिसी के अंतर्गत इतनी कंपनियां खुल गई है, जिसके चलते जो है आज आम आदमी जो है वो जैसे ट्रेन और बसों की यात्रा करता था, वैसे ही आज हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। और वाराणसी जिस तरीके से सुविधाएं बढ़ी है वहां, जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का मैंने जिक्र किया, जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पूरे देश भर से भीड़ उमड़ आती है, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक हो गया था कि वहां जो है कितनी भी ट्रेनें चलती हो लेकिन वहां लाखों लोगों का रोज का आना जाना है, तो उस हवाई अड्डे का विकास बहुत ही आवश्यक था। बहुत सारे सुविधाओं के चलते जो है एक प्राचीन और अर्वाचीन का जो एक संगम आपको दिखाई देता है वाराणसी में, उसको जरूर इससे बहुत बढ़त मिलेगी, पर्यटकों की संख्या जो है वो बढ़ेंगे, तीर्थयात्रियों की संख्या जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि कई लोग बुजुर्ग लोग वहां आ नहीं पाते हैं कई समस्याओं के चलते, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक सुविधाएं वहां प्रदान की जाएगी, वहां उससे ये अध्यात्म और आधुनिकरण का जो एक संगम वहां दिखाई दे रहा है उसका लाभ निश्चित ही मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, तो ये कनेक्टिविटी को किस तरह बढ़ाएगा?
बहुत आवश्यक है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग हो चाहे प्रोफेशनल लोग हों, वो आज अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने जो भी गंतव्य स्थल है वहां वो पहुंचे। ट्रेन में भी अब सुविधाएं काफी बढ़ गई है, कई वंदे भारत प्रधानमंत्री ने जो है शुरुआत की, लेकिन इसके बावजूद भी आज लोगों का आवाजाही वो इतनी बढ़ गई है कि आज चाहे हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, कनेक्टिविटी जो है वो विकास का मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए उस दृष्टि से कनेक्टिविटी, लोग 1-2 घंटे का भी समय हो, मुंबई और बंगलोर जैसे शहरों में अब हम एयर टैक्सी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किस तरीके से एक शहर के अंदर ही जो है किस तरीके से हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं। दिल्ली में भी नया हवाई अड्डा जो है दिल्ली NCR में बन रहा है, इसलिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटक आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, उन सभी की दृष्टि से भी, व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से भी आज लोग अपने समय बचाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अपने गंतव्य स्थल पहुंचना चाहते हैं, उस दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि, और खासकर Tier 2, Tier 3 जो शहर हैं, यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए मैं तो मध्य प्रदेश से ही आया हूं, रीवा में जिस तरीके से व्हाइट टाइगर सफारी है, रीवा में ऐसे बहुत सारे जल प्रपात है, बहुत झरने हैं जो पूरे रीवा क्षेत्र में जहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन दूरी के कारण लोग जो है ट्रेन में जाने में संकोच करते हैं, लेकिन इस हवाई अड्डे के विस्तार के साथ न सिर्फ आसपास के प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह के लोग आएंगे, अभी तो पूरे भारतवर्ष से जो है लोग रीवा की तरफ भी जाएंगे। वे सिर्फ पहले जब भोपाल और ग्वालियर जाते थे, वैसे ही रीवा का विकास होगा। आगरा आप देखते हैं पहले से ही एक लोकप्रिय केंद्र रहा है पर्यटन का, ताजमहल और वहां के किले के वजह से, और पास में ही मथुरा वृंदावन है, तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से भी आगरा हो, रीवा हो, जितने भी हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है, उससे सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय युवाओं को जो है रोजगार के अवसर खुलेंगे, बहुत सारे व्यवसायियों को बहुत नए, वहां एयरपोर्ट बनेगा तो टैक्सियां चलेंगी तो होटल्स खुलेंगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेक्टर को जो है बढ़ोतरी,
पूरी इकोनॉमी उसके आसपास रिवॉल्व करती है।
आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा।
सुरेश जी, सिग्रा से तकरीबन करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है और स्पोर्ट्स स्टेडियम जो नया वाराणसी खेल परिसर है, इसकी क्या विशेषता है और दूसरा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के लक्ष्यों के साथ ये कैसे मेल खाता है? और अभी आपने बात करी हमारा भारत का जो प्रदर्शन रहा, चाहे वो हम ओलंपिक्स में लें, पैरालंपिक्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा, तो ये किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को और जो यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह मोटिवेट करेगा?
देखिए, मैं स्वयं ही एनसीओई के भोपाल सेंटर में पूरा मैंने घूमा है और मैंने देखा है जिस तरीके के व्यवस्थाएं, यानी कि मुझे कोच बताते हैं कि हाँ, कोचिंग के लिए जो हमारे खिलाड़ी आते हैं उनका जो मन करता है उस हिसाब से उनको जो है, ऑफ कोर्स डाइट को ध्यान में रखते हुए, उनको हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है। वो कहते हैं कि हमें ये व्यवस्था चाहिए तो वो व्यवस्था उनके लिए जो है तैयार किया जाता है। आज जिस तरीके से खेलकूद के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में वैसे, लेकिन खेलकूद के क्षेत्र में विशेषकर जो हमारा सफलता आज कई अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे न सिर्फ खेल के बाद पहले प्रोत्साहन होता था, लेकिन खेल के पूर्व उनको उस कंपटीशन के लिए, उस प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के लिए जिस तरीके का छूट दिया गया है, जिस तरीके का व्यवस्थाएं की जा रही है, वो अभूतपूर्व है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम कई वर्षों से, हमारे युवा पीढ़ी के अंदर क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन सहूलियत के अभाव में वे लोग अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज जो है सरकार प्रोएक्टिव होकर न सिर्फ कई सारे स्टेडियम निर्माण कर रहे हैं, न सिर्फ सुविधाएं, इसका एक विकेंद्रीकरण हो रहा है। विकेंद्रीकरण यानी कि पहले सिर्फ बड़े शहरों में जाना पड़ता था, या तो NIS पटियाला में आना पड़ता था, या आपको दिल्ली जैसे शहर में आना पड़ता था, लेकिन आज एक प्रयास हो रहा है कि हम Tier 2, Tier 3 और जो अन्य शहर है वहां भी, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम इस तरह के व्यवस्थाएं करें और खेलो इंडिया जैसे पूरा एक आंदोलन, मैं इसको कहूंगा, इसको योजना नहीं कहूंगा, इसका उद्देश्य है कि पहले कहते थे कि हम पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब खराब नहीं होना है, खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बनोगे, आपके अंदर वो क्षमता जो है पैदा करने के लिए, और वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ हॉकी तक सीमित नहीं है, आप पारंपरिक खेलकूद में भी, चाहे वो खो खो हो या कोई भी हमारा खेल हो, उसमें भी आज उसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है अपना क्षमता का प्रदर्शन कर सके।
प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किए हैं और ये सारी पहल जो है, ये चाहे टूरिज्म डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो सारनाथ के क्षेत्र में हो, या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आपने बताई, तो ये सारी जितनी पहल हैं, ये भारत में बुनियादी ढांचे और विकास को कैसे दर्शाती हैं और लॉन्ग टर्म विजन आप क्या देख रहे हैं भारत का?
मैं समझता हूं कि जब हमने अमृत महोत्सव मनाया था 2022, तब हमने अपने लिए एक लक्ष्य रखा था 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो ये विकसित राष्ट्र मतलब मात्र एक सामरिक शक्ति के रूप में उभरना नहीं है, एक मिलिट्री सुपर पावर की तरह उभरना नहीं है, अपितु आर्थिक, सामाजिक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां हमारा विकास नहीं होगा। तो उसमें ढांचागत जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत आवश्यक है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं या अधोसंरचना विकास कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। और आज हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में जो विकास हुआ है, चाहे वो सड़क निर्माण हो, भवनों का निर्माण हो, पुल का बनाना हो, या आज नदी का किस तरीके से यातायात के लिए उपयोग किया जा सकता है, या रेलवे का हो और एजुकेशन का हो, हम देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय जो है हम ढांचा, हमारे यहाँ भी, पहले हम विदेशों में देखते थे, आज जो हम एक्सप्रेसवे और हाईवे से जाते हैं तो कई बार हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम पहले सिर्फ विदेशों में जाते थे तो ये सब देखते थे, लेकिन अपने भारत में भी हम देख रहे हैं कि आज जो है उसी प्रकार का विकास हो रहा है। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, फंडामेंटल चेंजेस की आवश्यकता है, और उसमें जो है शिक्षा भी शामिल है, उसमें खेलकूद भी शामिल है, उसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, ऐसा कोई हमारे जीवन का आयाम नहीं है जो उसमें शामिल नहीं है।
के जी सुरेश जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे वाराणसी में विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।